ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना भीषण चक्रवात दाना आज देर रात या कल तड़के भीतरकनिका और धामरा के बीच ओडिशा तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने क्षेत्र में दाना के टकराने के दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ओडिशा तट पर बंगाल की खाड़ी में आज सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है और ज्वार भाटा भी है। बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर और पुरी समेत कई तटीय जिलों में बारिश शुरू हो गई है और उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, क्योंकि आज रात ओडिशा तट पर भीषण चक्रवात दाना दस्तक देने वाला है। IMD ने कहा है कि आज शाम से ओडिशा तट पर बारिश और हवा की गति बढ़ जाएगी, जबकि तट पर 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने दाना से बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना वाले विभिन्न जिलों में चक्रवात नियंत्रण कक्ष खोले हैं, जबकि मंत्रियों को IMD द्वारा पूर्वानुमानित रेड जोन जिलों का प्रभार दिया गया है। सुबह 11 बजे तक निचले इलाकों में रहने वाले 90% आबादी को बहुउद्देश्य चक्रवात केंद्रों में स्थानांतरित करने की सरकार की योजना है। आज और कल 40 से ज्यादा उड़ाने और लगभग 200 ट्रेन रद्द कर दी गई है। संभावित चक्रवात प्रभावित जिलों में उड़ीसा सरकार ने शून्य हताहत की योजना बनाई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
इस बीच ओडिशा में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कई सरकारी संस्थान कल तक बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच भारतीय तटरक्षक ICG ने चक्रवात दाना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कई उपाय किए हैं। ICG चक्रवात की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। चक्रवात दाना के मद्देनजर पूर्वी तट पर रेड अलर्ट के बीच रेल सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए 24 घंटे समर्पित 9 वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें संबंधित क्षेत्रीय रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। MyGov नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 25 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल रात अमेरिका के वाशिंगटन DC में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक से इतर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैठक में श्रीमती सीतारामन ने बुनियादी ढांचे और इसके सहयोग से संचालित महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण विकास लाभ कम होने के खतरे पर बल दिया। बैठक के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण निवेशों से समझौता किए बिना देशों से ऋण दायित्वों को पूरा करने में मदद करने के लिए चर्चा का आह्वान किया। महाराष्ट्र विधानसभा के 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अब तक 153 उम्मीदवारों के 164 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। नामांकन दाखिल करने का कल दूसरा दिन था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि आदर्श आचार संहिता 15 अक्टूबर से लागू हो गई है। इसके बाद चुनाव अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी की गई। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 30 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार अपना नाम 4 नवम्बर तक वापस ले सकते हैं। मतदान एक ही चरण में 20 नवंबर को होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। पश्चिमी राज्यों के लिए 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन आज राजस्थान के जयपुर में शुरू हो रहा है। इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 साल पूरे होने का जश्न। प्रतिभागी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन CRS हैं। सम्मेलन में CRS से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने बिना किसी विकेट के नुकसान के 26 रन बना लिए थे। 3 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।